नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जोसेफ एस मूर पीएचडी की पुस्तक हाउ टू गेट रिच इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकी धन निर्माण पर लिखी सामान्य निजी वित्त पुस्तकों से अलग 300 वर्षों की सलाह का ऐतिहासिक परीक्षण प्रस्तुत करती है। इसका विषय यह नहीं है कि अमीर बनने का कोई एक शाश्वत सूत्र क्या है, बल्कि यह है कि अलग अलग समयों में अमेरिकियों को धन, काम, बचत और उन्नति के बारे में क्या बताया गया और उन सलाहों के परिणाम कितने भरोसेमंद रहे। मूर इतिहासकार के दृष्टिकोण से आर्थिक अवसरों और सामाजिक गतिशीलता के बदलते रूपों को देखते हैं। पुस्तक प्रचलित धारणाओं, खासकर एक ही नौकरी में लंबे समय तक टिके रहने और नियमित निवेश को पर्याप्त मानने वाली सोच की सीमाओं पर सवाल उठाती है। इसका केंद्रीय उद्देश्य पाठक को किसी चमकदार धन सूत्र पर निर्भर करने के बजाय परिस्थितियों, जोखिमों और उपलब्ध अवसरों को समझने की दृष्टि देना है। इसलिए यह इतिहास, अर्थव्यवस्था और निजी वित्त के संगम पर स्थित एक विश्लेषणात्मक पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, धन बनाने के नियम स्थिर नहीं, आर्थिक युग के साथ बदलते हैं। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि वित्तीय सलाह को सार्वभौमिक नियम मानना भ्रामक है। किसी दौर में भूमि, व्यापार या किसी विशेष कौशल से उन्नति संभव हो सकती थी, जबकि दूसरे दौर में वे ही रास्ते कम उपयोगी या अधिक जोखिमपूर्ण बन सकते थे। मूर 3 सदियों की सलाह को साथ रखकर दिखाते हैं कि धन संबंधी दावे उस समय की मजदूरी, बाजार, संस्थाओं, तकनीक और सामाजिक अवसरों से जुड़े होते हैं। इस दृष्टि से इतिहास केवल पुराने उदाहरणों का संग्रह नहीं रहता, बल्कि वर्तमान सलाह की परीक्षा करने का उपकरण बन जाता है। पाठक को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी रणनीति की सफलता के पीछे उसका आकर्षक सिद्धांत नहीं, बल्कि उसका संदर्भ भी निर्णायक होता है। पुस्तक किसी एक विकल्प को पूरी तरह अस्वीकार करने के बजाय कठोरता को समस्या मानती है। यदि आय के स्रोत, रोजगार की स्थिरता, निवेश के मूल्यांकन या जीवन की लागत बदलती है, तो व्यक्ति की योजना भी बदलनी चाहिए। यह निष्कर्ष तात्कालिक रुझानों के पीछे चलने की सलाह नहीं देता। इसका अर्थ है कि निर्णय लेते समय पुराने सफल उदाहरणों को सीधे दोहराने के बजाय उनकी परिस्थितियों और सीमाओं को पहचानना चाहिए। दूसरा, एक नौकरी, नियमित बचत और शेयर निवेश वाला सेवानिवृत्ति मॉडल हर दौर में भरोसेमंद नहीं रहा। मूर उस लोकप्रिय धारणा की आलोचनात्मक जांच करते हैं कि व्यक्ति एक ही नौकरी में लगभग 40 वर्ष काम करे, आय का एक निश्चित हिस्सा शेयरों में लगाए और फिर सुरक्षित रूप से सेवानिवृत्त हो जाए। पुस्तक के अनुसार यह मॉडल कुछ पीढ़ियों, विशेषकर बेबी बूमर काल में अधिक अनुकूल परिस्थितियों से लाभान्वित हुआ, पर इसे हर व्यक्ति और हर समय के लिए नियम नहीं कहा जा सकता। अलग ऐतिहासिक अवधियों में बाजारों के उतार चढ़ाव, रोजगार की अनिश्चितता, महंगाई और आय की स्थिति ऐसी रही है कि केवल इस अनुशासन से पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनना सुनिश्चित नहीं था। यहां तर्क बचत या निवेश के विरुद्ध नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या एक सरल प्रतिशत और एक अनुमानित करियर अवधि को पूर्ण योजना समझ लिया जाए। पुस्तक इस मिथक को तोड़कर जोखिम के कई स्रोतों पर ध्यान दिलाती है, जैसे नौकरी का टूटना, बाजार का खराब समय और बदलती जीवन लागत। व्यावहारिक रूप से इसका संकेत है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य, समय सीमा और आय की स्थिरता के अनुसार व्यवस्था बनाए। विविध साधन, समय समय पर समीक्षा और वैकल्पिक आय क्षमता किसी विरासत में मिले एकल ढांचे से अधिक उपयोगी हो सकते हैं। तीसरा, अमेरिकी सामाजिक गतिशीलता में अवसर और अस्थिरता दोनों को साथ देखना चाहिए। पुस्तक अमेरिका को न तो पूर्णतःबंद सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करती है, न ऐसी जगह के रूप में जहां हर व्यक्ति आसानी से ऊपर पहुंच सकता है। मूर के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से आर्थिक उन्नति की संभावना बनी रही है, लेकिन धन का बने रहना भी उतना ही अनिश्चित रहा है। वे उपलब्ध गतिशीलता संबंधी आंकड़ों का सहारा लेकर इस विचार पर बल देते हैं कि निम्न आय पृष्ठभूमि में जन्मे बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं और संपन्न परिवारों की स्थिति भी पीढ़ियों तक स्वतः सुरक्षित नहीं रहती। यह संतुलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि निराशावादी दृष्टिकोण व्यक्ति को अवसर पहचानने से रोक सकता है, जबकि अति आशावाद संरचनात्मक बाधाओं और जोखिमों को छिपा देता है। पुस्तक का निहितार्थ है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि शुरुआती संसाधन और सीमाएं जरूर तय करती है, पर वह अंतिम परिणाम की गारंटी नहीं होती। इसी तरह धनवान होना स्थायी क्षमता का प्रमाण भी नहीं है। इस तर्क का व्यावहारिक मूल्य यह है कि पाठक अपनी स्थिति का ईमानदार आकलन करे, उसे अवसरों की तलाश, कौशल निर्माण और वित्तीय सावधानी को एक साथ रखना चाहिए, पर किसी एक पीढ़ी की उपलब्धि को अपने भविष्य का निश्चित नक्शा नहीं मानना चाहिए। चौथा, एक ही धन सूत्र के बजाय रणनीतियों का मिश्रण और संशयपूर्ण सोच आवश्यक है। हाउ टू गेट रिच इन अमेरिकन हिस्ट्री किसी नई जादुई योजना का प्रस्ताव नहीं करती। इसके विपरीत, इसकी ऐतिहासिक समीक्षा का निष्कर्ष है कि जो लोग हर युग के लिए एक ही उत्तर बेचते हैं, उनकी सलाह को संशय के साथ सुनना चाहिए। मूर का जोर रणनीतियों के मिश्रण पर है, क्योंकि व्यक्तिगत वित्त कई अनिश्चितताओं के बीच काम करता है। आय, काम का स्वरूप, बाजार और पारिवारिक जरूरतें एक साथ बदल सकती हैं। ऐसे में केवल वेतन वृद्धि, केवल बचत, केवल शेयर निवेश या केवल उद्यमिता पर निर्भर रहना व्यक्ति को एक विशेष जोखिम के सामने कमजोर कर सकता है। रणनीतियों का मिश्रण यहाँ किसी तय उत्पाद सूची का नाम नहीं है, यह सोचने की पद्धति है जिसमें व्यक्ति अपनी आय की क्षमता, तरल बचत, दीर्घकालिक निवेश, खर्च नियंत्रण और विकल्पों को अलग अलग भूमिकाओं में देखता है। इतिहास इस पद्धति को विनम्रता भी देता है। पिछली सफलताओं से सीखना संभव है, मगर उन्हें भविष्यवाणी समझना नहीं। पुस्तक का विशिष्ट योगदान इसी बौद्धिक अनुशासन में है। यह पाठक से पूछती है कि किसी सलाह के लाभ किस परिस्थिति में मिलते हैं, उसके जोखिम क्या हैं और परिस्थिति बदलने पर कौन सा विकल्प उपलब्ध रहेगा। अंत में, वित्तीय के इतिहास वर्तमान की निराशा और अतीत के प्रति रोमानी दृष्टि दोनों को चुनौती देता है। मूर की पुस्तक बार बार उभरने वाली उस सार्वजनिक भावना को रेखांकित करती है कि साधारण लोगों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो चुके हैं। औपनिवेशिक काल से लेकर 19वीं सदी और आधुनिक सेवानिवृत्ति संबंधी चिंताओं तक अलग अलग पीढ़ियों ने अपने समय को असाधारण रूप से कठिन माना है। इस ऐतिहासिक पैटर्न का उपयोग पुस्तक वर्तमान कठिनाइयों को नकारने के लिए नहीं करती, बल्कि वह दिखाती है कि आर्थिक निराशा के व्यापक दावे अक्सर भविष्य की संभावनाओं का पूरा चित्र नहीं देते। साथ ही यह अतीत को अधिक सरल और सुरक्षित युग मानने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाती है। पुराने समयों में अवसर थे, लेकिन उनके साथ असुरक्षा, सीमित पहुंच और विफलता के अलग रूप भी थे। इस दोहरी आलोचना से पुस्तक का स्वर संतुलित बनता है। पाठक को न तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उन्नति असंभव है, न यह कि पहले अपनाया गया कोई मार्ग आज स्वतः काम करेगा। वित्तीय निर्णयों में माहौल, आंकड़ों और व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखना अधिक उपयोगी है। इस प्रकार पुस्तक आर्थिक इतिहास को आशावाद का प्रचार नहीं, बल्कि अतिरंजित भय और अतिरंजित भरोसे दोनों से बचने की कसौटी बनाती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो निजी वित्त की सरल और निश्चित लगने वाली सलाहों से संतुष्ट नहीं है। इतिहास, आर्थिक गतिशीलता, रोजगार और सेवानिवृत्ति योजना में रुचि रखने वाले पाठक इससे अधिक संदर्भपूर्ण दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। नए निवेशक भी इससे लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे इसे विशिष्ट निवेश निर्देशों की पुस्तक नहीं, बल्कि वित्तीय दावों का मूल्यांकन करने की पुस्तक समझें। इसका व्यावहारिक लाभ किसी तैयार धन योजना में नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने की क्षमता में है। क्या यह रणनीति वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है? क्या इसका परिणाम किसी असाधारण पीढ़ी या बाजार काल पर निर्भर रहा है? यदि आय या बाजार बदल जाए तो योजना कितनी टिकाऊ रहेगी? ऐसी पूछताछ व्यक्ति को एकल सूत्रों और अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से बचा सकती है। समान श्रेणी की बहुत सी पुस्तकें बजट, निवेश या उद्यमिता के लिए सीधे निर्देश देती हैं। मूर की अलग पहचान यह है कि वे सलाह देने की परंपरा को ही जांच का विषय बनाते हैं। वे धन संबंधी विश्वासों के पीछे छिपे ऐतिहासिक संदर्भ, अवसर और संयोग को सामने लाते हैं। इसलिए यह पुस्तक उन लोगों के लिए अधिक मूल्यवान है जो निश्चित उत्तर नहीं, बल्कि बदलती अर्थव्यवस्था में विवेकपूर्ण और लचीली वित्तीय सोच विकसित करना चाहते हैं। इसकी सीमा भी यही है कि त्वरित कदमों की सूची चाहने वाले पाठक को अलग व्यावहारिक संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, जोसेफ एस मूर PhD, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।